सुनते हैं मुझे वार्ता पे। दोस्तों, आज मैं जिनकी बात करने वाली हूँ उनका नाम आज भी भारत के कौशल योद्धाओं के तौर पर बड़े गर्व से लिया जाता है। जितनी अद्भुत पृथ्वीराज चौहान की वीरता की कहानियां हैं, उतनी ही रोचक उनकी प्रेम कहानी भी थी। पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें आम तौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर भी नियंत्रण किया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कार्पुरा देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। वो बड़े होकर एक बुद्धिमान, बहादुर और साहसी युवा हुए। उनके नाना टापरा राजवंश के अनकपाल तृतीय उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना वारिस बनाया। 15 वर्ष की कम उम्र में पृथ्वीराज ने अपने राज्य का सिंहासन संभाला था। सोमेश्वर चौहान का 1179 में एक युद्ध में निधन हो गया और पृथ्वीराज राजा के रूप में विराजमान हुए। उन्होंने अजमेर और दिल्ली, दो राजधानियों पर शासन किया। राजा बनने पर उन्होंने अपने प्रदेशों का विस्तार करने के लिए कई अभियानों पर जोर दिया। उनके प्रारंभिक अभियान राजस्थान के छोटे राज्यों के खिलाफ थे, जिसने आसानी से जीत हासिल की थी। फिर उन्होंने खजुराहो और महोबा के चंदेलों के खिलाफ अभियान चलाया। वो चंदेल को पराजित करने में सफल रहे और इस अभियान से महत्वपूर्ण जीत हासिल करने में सफल रहे। पृथ्वीराज एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक प्रेमी भी थे। बात उन दिनों की है जब अपने नाना की गद्दी संभालने के लिए पृथ्वीराज ने दिल्ली का शासन संभाला था। दरअसल दिल्ली के पूर्व शासक अनकपाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दामाद और अजमेर के महाराजा सोमेश्वर चौहान से ये अनुरोध किया कि वो अपने पुत्र पृथ्वीराज को दिल्ली की सत्ता संभालने दे। सोमेश्वर चौहान ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक बन गए। एक तरफ जहां पृथ्वीराज दिल्ली की सत्ता संभाल रहे थे, वहीं दूसरी ओर कन्नौज के शासक जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा कर दी थी। संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में बहुत खूबसूरती के साथ दर्ज है। जब पृथ्वीराज की वीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में गूंज रही थी, तब संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता का और सौंदर्य का वर्णन सुना। उसके बाद वो पृथ्वीराज को प्रेम करने लगी। और दूसरी ओर संयोगिता के पिता जयचंद ने संयोगिता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने की घोषणा कर दी। जयचंद पृथ्वीराज के गौरव और उनकी आन से ईर्ष्या रखता था, इसलिए उसने इस स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। पृथ्वीराज का अपमान करने के उद्देश्य से जयचंद ने उन्हें स्वयंवर में तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मुख्य द्वार पर उनकी मूर्ति को ऐसे लगवा दिया जैसे कोई द्वारपाल खड़ा हो। स्वयंवर काल के समय जब संयोगिता हाथ में वरमाला लिए उपस्थित राजाओं को देख रही थी, तभी उनकी नजर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज की मूर्ति पर पड़ी। उसी समय संयोगिता मूर्ति के पास जाती हैं और वरमाला पृथ्वीराज की मूर्ति को पहना देती हैं। उसी क्षण घोड़े पर सवार पृथ्वीराज राजमहल में आते हैं और सिंहनाद के साथ सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकारने लगते हैं। पृथ्वीराज सहयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर निकल पड़े। इधर सहयोगिता और पृथ्वीराज खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को मारने की योजना बनाने लगा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार युद्ध में हराया था, लेकिन हर बार उसे जीवित छोड़ दिया। गौरी ने अपनी हार का और जयचंद ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जयचंद ने अपना सैनिक बल पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया, जिसके फलस्वरूप युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया गया। बंधक बनाते ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया और कई यातनाएं भी दी। ये थी तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान पर कब्जा कर लिया गया। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद महारानी संयोगिता और अन्य राजपूत महिलाओं ने अफगान आक्रमणकारियों को आत्मसमर्पण करने के बजाय अपनी जान गंवा दी। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरियों ने उनके पुत्र गोविंद राज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंद राज को हटा दिया और अपने राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। गोविंद राज रण स्तंभपुरा चले गए, जहां उन्होंने शासकों की एक नई चौहान शाखा स्थापित की। बाद में हरिराज को गौरियों के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 300,000 सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वो मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए।